ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम तीन बार ओम शांति का शब्द उच्चारण किया, उसका अर्थ क्या मन में रहा? आज हम तीन बारी ओम शांति बुलवाते हुए मुझे यही याद आ रहा था, हमारे बाबा के ज्ञान का सार तीन बिंदुओं में समाया हुआ है। तो एक, ओम शांति, अपने को मैं कौन हूँ, मैं एक छोटी बिंदु आत्मा हूँ, वो याद दिलाया। और दूसरी, ओम शांति कि हम किसकी संतान हैं, शिव बाबा बिंदु। और तीसरी, ओम शांति ड्रामा। अगर हम सारे ज्ञान के सागर जो इतना ज्ञान देता है उसको अगर हम अपने अंदर समा नहीं सकते, इतने सब बातें हमको याद नहीं आता है, तो अगर ये तीन बिंदु हम याद रखें तो हम सहज ही माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। ये तीन बिंदु याद करना सहज है ना, अनपढ़े भी याद कर सकते हैं। आप सभी रोज बाबा की मुरली सुनते होंगे और हर रोज मुरली के अंदर बाबा हमें दो बातें बार बार याद दिलाते हैं। वो कौन सी बातें? एक तो अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, और दूसरा, समय कम है, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनकर के समय के पहले तैयार हो जाओ। यानी समय की सूचना बाबा हमको हर रोज मुरली में देता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि समय कितना बलवान है। कई बार बाबा साकार मुरली में कहता है कि मैं भी समय के पहले इस सृष्टि पर अवतरित नहीं हो सकता हूँ। जब संगम का समय आता है और वो घड़ी आती है, तभी हम ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर सकता हूँ। तो समय जितना भगवान बलवान है, उतना समय भी बलवान है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं, गॉड एंड टाइम आर बेस्ट हीलर्स। आप सभी ने ये भी कहावत सुना होगा ना, समय के पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने का है। तो समय का महत्व को हमको जानना है पहले, तभी हम समय की पुकार को सुन सकते हैं। देखो, बाबा के महत्व को हम जानते हैं तभी हम बाबा के महावाक्य सुनने के लिए समय निकालते हैं। अगर हमने बाबा को पहचाना ही नहीं तो हमको पढ़ाई के लिए समय नहीं होता, हम कह देंगे फुर्सत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझें कि संगम युग के समय का महत्व क्या है। वैसे भी दुनिया में समय का महत्व बताया जाता है, टाइम इज लाइफ, वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ, टाइम इज मनी, समय को खास करके धन के साथ कंपेयर करते हैं, जीवन के साथ भेंट करते हैं, इतनी वैल्यूबल है दुनिया के हिसाब से। परंतु संगम युगी ब्राह्मणों के लिए संगम का समय और ही महत्वपूर्ण वाला है। तभी बाबा ने कहा है कि संगम युग का एक एक सेकेंड भविष्य की एक साल के बराबर है। अगर हमने एक सेकेंड व्यर्थ गवाया तो माना एक साल हमारा व्यर्थ चला गया। तो इसलिए हमको समय को सफल करना है, समय को उपयोग करना है, यूज करना है, ताकि हम समय से पूरा लाभ ले सकें। क्योंकि संगम की समय ही ऐसा समय है जहां पर हम सारे कलप के लिए अपने कर्मों रूपी बीज हम बोते हैं। तो संगम का समय है बीज बोने का, फिर सारे कलप के अंदर उसका फल हम प्राप्त कर सकते हैं। संगम का समय है सारे कलप के लिए हमारी कर्मों की कहानी को रिकॉर्ड करने का। जैसे कभी भी किसी का भाषण या किसी का फोटो निकालते हैं तो उसी समय उसको अपने ऊपर कितना अटेंशन रहता है, क्योंकि बाद में उसको बार बार देखना पड़ेगा। तो संगम युगी समय हम जो सोचते हैं, जो हम मुख से वचन बोलते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो सब रिकॉर्डिंग होता है और उसके अनुसार सारे कलप के कर्मों की कहानी बन जाती है। तो इतना हमको अटेंशन रखना है, हर सेकेंड हमको यही स्मृति रहे कि हम ड्रामा के स्टेज पर हैं, हम हीरो एक्टर हैं और हमको सब देख रहे हैं, सारे विश्व देख रहा है। तो चलते फिरते खाते पीते अगर ये हमको स्मृति बुद्धि में रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्म भी अच्छा हो जाएगा और हमारा समय भी सफल हो जाएगा। और तीसरी बात, संगम युग का समय है ही परमात्मा से सम्मुख मिलन मनाने का। संगम युग पर ही भगवान आते हैं और संगम युग पर ही हमको अपना डायरेक्ट बच्चा बनाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ ही होता है। सारे कल्प में भले हम देवता बनेंगे भविष्य में, परंतु ये सुख हमको नहीं मिल सकता। संगम युग पर ही हमारा जीवन हीरे तुल्य जीवन है। बाकी सभी जीवन सत्युग में भी हमारा गोल्डन एज लाइफ होगा, परंतु डायमंड लाइफ नहीं हो सकता। तो संगम युग पर ही हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, त्रिलोकीनाथ बनते हैं, त्रिनेत्री बनते हैं। बाकी समय हमको इतना भी नहीं मालूम होगा कि हमारा दूसरा जन्म क्या होगा। संगम युग पर ही हम विश्व कल्याणकारी बनकर के विश्व की हम सेवा कर सकते हैं। सारे विश्व एक परिवार बन जाते हैं। भविष्य में हम अपने अपने परिवार में रहेंगे, परंतु हम ये विश्व एक है और हम सब भाई भाई एक भगवान एक पिता के बच्चे, ये विश्व भ्रातृत्व का संबंध यहाँ पर ही होता है। तो अगर हम संगम युगी जीवन जीवन के महत्व को हम जानते हैं तो उसके साथ साथ समय का महत्व आ ही जाता है। तो भाग्यवान उसको कहा जाता है जो संगम युग के एक सेकंड को भी व्यर्थ नहीं गवाए। कभी हम समझे कि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि समय को हम सफल करते हैं तो हमारा संकल्प भी सफल हो जाता है। समय और संकल्प दोनों बहुत बड़े खजाने हैं। अभी वर्तमान समय, बाबा कहते हैं ना कई बार, आप सभी विश्व के आगे एक घड़ी हो, क्लॉक। तो घड़ी क्या दिखाता है आपको? समय की सूचना देता है ना, अभी कितना समय है, अभी उठना है, अभी सोना है, अभी खाना है। तो अगर हम अपने को विश्व के सामने घड़ी समझे तो हम कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। जैसे घड़ी कभी नहीं पूछता है अभी कितना बजा है, घड़ी सबको समय दिखाता है। तो हमको भी अपने को वर्तमान समय, विश्व के घड़ी, विश्व को समय दिखाने वाले हम बाबा के बच्चे हैं, ये स्मृति रखना है। तभी हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अब तक पूछते रहे कि विनाश के लिए कितना समय बचा है, विनाश की डेट कौन सी है। तो इसका मतलब कि हमने अभी अपने को समय को पहचाना ही नहीं है, अपने को भी नहीं पहचाना है। जिसको अपनी पहचान है उसको समय की पहचान आ ही जाता है। तो ऑटोमेटिकली जिसके जीवन में अपनी पहचान है और समय की पहचान है, उसके जीवन नेचुरली दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन जाते। तो अभी अगर हम शांति में बैठ करके सोचें कि वर्तमान समय हम समय की क्या पुकार सुन रहे हैं, समय क्या कह रहा है। सिर्फ समय की पुकार ही नहीं, मैं समझती हूँ चार प्रकार के पुकार हमको सुनाई देना चाहिए। चार प्रकार के पुकार सुनाई देता है। अगर आपकी लाइन बिजी है एक भी पुकार सुनाई नहीं देगा। जैसे आपकी टेलीफोन एंगेज है तो दूसरे आपको कैसे मिल सकते। तो जब अपने को फ्री करेंगे तभी तो उसका पुकार हम सुन सकते। तो कौन सी चार प्रकार की पुकार वर्तमान समय हमको सुनाई दे रहा है और हम सुनकर के उसको क्या जवाब देंगे? कोई आपको पुकारते हैं तो पुकारने का मतलब है कि हम पुकार सुनकर के उसका जवाब देना चाहिए ना, क्या रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम सुनते हैं बाबा की पुकार। बाबा हम बच्चों को पुकार रहे हैं, बाबा हम बच्चों को रोज अमृत वेला, मुरली के द्वारा अनेक बारी बाबा की पुकार, आओ बच्चे मैं सूक्ष्म वतन में आप सब बच्चों के लिए इंतजार कर रहा हूँ, अभी जल्दी जल्दी अव्यक्त स्वरूपधारी बन करके, फरिश्ता स्वरूप धारण करके सूक्ष्म वतन में आ जाओ। कई बार बाबा ने कहा है ना कि इतने साल हमको पुकारा, जब जब आप बच्चों ने हमको पुकारा तो हम तो आ गए। अभी बाबा हम बच्चों को पुकार रहे हैं कि सूक्ष्म वतन में अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आ जाओ। तो बाबा की पुकार सुनाई देती है, किसको सुनाई देती है, हाथ उठाइए। और क्या जवाब देंगे बाबा को? मुख से जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिकली बाबा जैसा स्वरूपधारी बन करके सूक्ष्म वतन वासी बन जाना। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ के जाना है, परंतु जब चाहे एक सेकंड में साकारी रूप से आकारी बन जाए, और उस आकारी स्वरूप में जितना समय हम रहना चाहे उतना समय हम रह सके। कई बार हम बाबा के बच्चों से पूछते हैं सूक्ष्म वतन कितना दूर है और कितना समय लगता है वहां जाने लिए, आप बताएंगे कितना दूर है सूक्ष्म वतन? सूर्य चांद सितारों से भी पार, बहुत दूर है ना? परंतु कितना समय लगता है जाने में? एक सेकेंड। और एक संकल्प की दूरी है। आप अपने वेश को बदली कर दो, आपका देश बदल जाएगा। चेंज योर ड्रेस एंड योर एड्रेस चेंज। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो ये वेश बदली करने की जो प्रैक्टिस है ना, वो हमको बार बार करना है, ताकि जब भी हमको बाबा की पुकार सुनाई दे, आओ बच्चे, हम एक सेकंड में इस साकारी ड्रेस को चेंज करके आकारी वतन बना सके, आकारी ड्रेस हम पहन सके। तो बाबा की पुकार है हम बच्चों के लिए कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन करके बाप के वतन में आओ, क्योंकि वहां पर फरिश्तों की महफिल लगेगा, उसके बाद ही हम परंधाम जाएंगे। जब हम परंधाम से आए ना, उस समय सूक्ष्म वतन नहीं था। सूक्ष्म वतन तो संगम युग में रचाया गया है। तो जब हम वापस जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन जाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से लेकर हम अपने को अवतार समझ करके कर्म के लिए हम शरीर में आए और कर्म के बाद वापस। तो ये बाबा की पुकार का जवाब है। और दूसरी तरफ क्या पुकार है? समय की पुकार। समय क्या कह रहा है? हरी अप, जल्दी करो, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी भी थोड़ी रही। 5000 साल में 4800 ईयर्स चला गया, 900 ईयर्स चला गया, अभी बहुत कम समय बचा। तो समय कह रहा है कि जल्दी करो, यानी समय की पुकार यही है कि समय की इंतजार नहीं करो, इंतजाम करके आप समय के पहले मंजिल पर पहुंचो। ये तीव्र पुरुषार्थ। तो समय तो सबको पुरुषार्थ कराएगा, परंतु अगर हम समय को अपना टीचर बनाएंगे तो हमको जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कई बार कहता है कि समय को अपना टीचर नहीं बनाओ। शिव बाबा आपका टीचर है, चलो दूसरा टीचर ड्रामा है, बस समय की इंतजार नहीं करो। कई ब्राह्मण सोचते हैं ना कि जब समय आएगा तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके फास्ट चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। इस समय को अपना टीचर नहीं बनाना है, समय टीचर उनका बनेगा जो अज्ञानी होंगे। जो ज्ञानी आत्मा है वो बाबा को टीचर बना के पढ़ाई पूरा कर देते हैं। तो इसलिए समय की पुकार हम बच्चों के लिए क्या है, वर्तमान समय, अब घर जाना है। समय हमको चेतावनी दे रही है कि अभी घर जाने की तैयारी करो। बहुत समय यहाँ पर पार्ट बजाया, अभी नाटक पूरा होने वाला है। जैसे घर से आए थे नंगे, वैसे नंगा होकर के घर जाना है। जो समय की पुकार सुनते हैं वो प्रैक्टिकली अपने घर जाने की तैयारी में बिजी होंगे। तो इसलिए घर जाने के लिए समय की पुकार सुन करके हमको क्या करना है, समेटने की शक्ति को धारण करना है। अभी विस्तार करने का समय नहीं है, सार में चले जाना है, समेट लेना है सब कुछ। जैसे नाटक में आप जाते हो ना, तो जब नाटक पूरा होने का होता है कि कैसे सूचना मिलती है आपको, ये नाटक अभी पूरा हो रहा है, कि लास्ट सीन में सभी एक्टर्स ड्रामा के स्टेज पर आ जाते हैं और पर्दा गिर जाता है, बस पूरा हुआ। अभी बस वही समय सूचना दे रहा है कि अभी लास्ट सीन ड्रामा का चल रहा है। चाहे कभी भी हमने यहाँ पर आए हो, परंतु सब की वानप्रस्थ अवस्था है और सबको घर जाना है। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। परंतु जाने के लिए भी दो तरीका है। वैसे तो सबको घर जाना ही पड़ेगा, समय के अनुसार नाटक पूरा हो जाता है। परंतु या तो हम पवित्र होकर के बिना कोई भी पनिशमेंट घर जा सकते हैं। अगर हमने बाबा से योग नहीं लगाया, अपने को पवित्र नहीं बनाया, तो हमको बीच में धर्मराजपुरी में रुक करके हिसाब किताब चुक चुक करके घर जाना पड़ेगा। तो समय की पुकार सुन करके, समय की सूचना सुन करके हमको क्या करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके याद की यात्रा में रहना है। आज भी बाबा ने कहा, याद की यात्रा को कभी नहीं भूलो। चलते फिरते खाते पीते बाबा की याद बनी रहे, तभी हम आत्मा को पावन बना सकते हैं और बिना कोई पनिशमेंट हम घर वापस जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी पुकार है समय की, अभी घर जाना है। बस अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत का मतलब कि सब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके हम अपने घर जाने के लिए रेडी। बाबा ने तो बता दिया है, दो विजल बच चुके हैं, अभी तीसरा विजल बजना है। आप लोगों को पता है कौन सी दो विजल बच चुके हैं? कई आप लोग आने के पहले वो विजल बच चुका है। एक विजल था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, और दूसरा विजल जब साकार बाबा अव्यक्त बने। वो समय हमको इशारा दिया कि अभी जल्दी करो। अभी तीसरा विजल कौन सा होगा? उसके बाद तो कोई यहाँ पर रहेंगे नहीं, सबको अपने घर जाने का। तो इसलिए वो कभी भी वो तीसरा विजल बच सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, समय की पुकार को सुनकर के एवर रेडी रहना है। इसलिए साकार बाबा का क्या स्लोगन था, जो काम कल करना है वो आज करो, जो आज करना है अभी करो। अब भी नहीं तो कभी नहीं। नो, अगर हम हर बार यही कहते रहेंगे आज नहीं कल, मैं नहीं दूसरा, तो हम समय को गवाते जाएंगे। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। गीत है ना, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर लो। तो इसलिए हमको समय से एक विशेष पाठ सीखना है। समय की एक बहुत बड़ी विशेषता है, अगर हम सभी वो विशेषता को धारण कर ले तो हम समय के पहले मंजिल पर पहुंच सकते हैं। वो कौन सी विशेषता है समय में? समय कभी भी पीछे मोड़ के नहीं देखता है, समय कभी भी पीछे नहीं जाता है, समय सदैव आगे ही बढ़ता जाता है। तो अगर हमको समय के पहले मंजिल पर पहुंचना है तो समय से ये विशेषता हम सीख लें। हम भी कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में पीछे मोड़ के नहीं देखें। इसका मतलब कि पास्ट बीती हुई बातों को अपने मन में नहीं लाए, नहीं तो हमारी स्पीड ढीला हो जाएगा और समय निकल जाएगा तो हम रह जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि संगम युग छोटा सा युग है कंपेयरिंग टू द होल साइकिल, परंतु इस छोटे से युग में हम सारे कलप का प्रारब्ध बना लेते हैं। भले आप कभी भी ज्ञान में आए हुए हो, जब से ज्ञान में आए तब से लेकर अब तक आपने समय को सफल किया है, समय को कभी निष्फल नहीं किया है, तो आप देखेंगे आपका बहुत समय का प्रारब्ध जमा हुआ होगा। तो जो समय को रेस्पेक्ट देते हैं तो समय उनको मदद करता है। नो, कई बार एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था कि क्यों नहीं आप जब भी शक्ति, कोई भी शक्ति को आप बुलाते हो, वो शक्ति आपके ऑर्डर को क्यों नहीं मानता है? समझो अभी हमको सहन शक्ति चाहिए और हम मन में संकल्प लाते हैं कि अभी मुझे सहन शक्ति चाहिए, परंतु उसी समय काम में नहीं आता है। थोड़ा समय के बाद रियलाइज होता है कि अभी हमको ये शक्ति यूज करना है। तो क्यों नहीं वो शक्ति हमारी ऑर्डर को नहीं मानते, जबकि सर्व शक्तियां शक्तिवान परमात्मा की वर्षा है, बर्थ राइट है, तो हम क्यों नहीं उसको अधिकार से यूज कर सके? उसी समय समय हमारे से बदला लेता है। समय कहता है कि तुमने हमको रेस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसे समय को व्यर्थ गवा दिया, अभी आपको ये शक्ति चाहिए, इस समय पर हम आने नहीं देंगे। ये समय हमारे से बदला लेता है तो हम सफल नहीं हो सकते। तो इसके लिए शक्तियों को जब चाहे तब आप यूज करना चाहते हो तो समय का कदर होना चाहिए, कभी भी पीछे मोड़ के नहीं देखना। वैसे भी लौकिक में कहा जाता है ना कि पीछे मोड़ के देखना माना अपशकुन है, ये एस्पिशियस साइन नहीं है। तो अगर हमको समय की पुकार सुनकर के समय के पीछे पीछे साथ साथ में चलना है तो हम अपनी स्पीड को उसके जैसा रखने के लिए हम पास्ट इस पास्ट करके जितना वर्तमान समय की वैल्यू है उसको जान करके उसके अनुसार हम चलें। तो इसके लिए दो शत्रु, समय की पुकार सुनने में दो शत्रु हमारे पुरुषार्थ में विघ्न स्वरूप बन जाते। वो कौन सी दो शत्रु है? आलस्य और अलबेलापन। आलस्य आता है जैसे बाबा कहते ना गे भाषा से, करेंगे सोचेंगे देखेंगे, पोस्टपोन ही करते रहते हैं, उसी समय नहीं करते, और दूसरा है अलबेलापन, उसको बाबा कहते तो बाशा, ये करे तो मैं करूं, महारती करे तो मैं करूं। तो दूसरों के साथ भेंट करके अपने आप को अलबेलापन की निद्रा में सुला देते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने जीवन को ऊंचा बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली संगम युग के समय को सफल करना है। तो समय सफल किया तो साथ में हमारा संकल्प सफल हो ही जाता है। तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी पुकार समय की वर्तमान समय में घर जाने का, अभी यहाँ रहने का नहीं है, हम मेहमान हैं और हमारा गेस्ट हाउस पूरा हुआ, हमारा रिटर्न टिकट, अभी रिटर्न जर्नी है, हमारा टिकट एक्सपायर हो रहा है, अभी हमको चाहे या न चाहे समय के अनुसार घर जाना ही है। तो क्यों नहीं समय की पुकार को सुनकर के हम अपने घर जाने की तैयारी में लग जाए। हम परंदाम निवासी है, वहां से हम आए, हमको वहां जाना है, बस ये ताक। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले सारा समय यही मंत्र उनके मुख से निकलता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो अगर हमको ये ताक लगी रहे तो इस दुनिया से हमारा पांव, बुद्धि रूपी पांव, ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। तो ये मंत्र आप जरूर इस बारी ले जाइए अपने साथ। कौन सा मंत्र? आप घर जाना है, बस समय पुकार रहा है, नाटक पूरा हुआ, अभी पेटी बिस्तरा बंद करो, रिटर्न जर्नी। और दूसरी पुकार कौन सा? वैसे तो हम दुनिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, विनाश होने वाला है, वो खुद ही बता रहे हैं, परंतु हम ब्राह्मण विनाश के शब्द के बदले परिवर्तन शब्द यूज करते। तो समय क्या कह रहे हैं अभी? अपना परिवर्तन करो। अगर हम अपना परिवर्तन अभी नहीं करेंगे, विश्व तो परिवर्तन होगा ही, परंतु हम नई दुनिया जो आने वाले हैं, उसमें हम ऊंच पद नहीं पा सकते। तो समय की पुकार हम सबके लिए यही है कि स्व परिवर्तन की स्पीड को तेज करो, क्योंकि ब्रह्म कुमारी का स्लोगन ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगर हम अपने परिवर्तन नहीं करेंगे तो दुनिया तो परिवर्तन होगा ही, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, रात और दिन तो होगा ही, पर अगर हम जागृत होकर के समय के पहले हम परिवर्तन कर लिया तो हमको उसका प्रारब्ध मिल जाएगा। तो इसमें हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। ब्रह्मा बाबा का इस पर यही स्लोगन था, स्व परिवर्तन के लिए पहले मैं, और सेवा में चांस देने के लिए पहले आप। और स्व परिवर्तन में भी समय की पुकार क्या है? संस्कारों का परिवर्तन। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी सदैव कहती थी, कई ब्राह्मणों के अंदर देह के तरफ वैराग्य आ गया है, देह के संबंधियों के तरफ भी वैराग्य आ गया है, पदार्थों से भी वैराग्य आ गया है, बाकी एक बचा है, वो है अपने पुराने संस्कारों से वैराग्य। तो वो पुराने संस्कारों से वैराग्य न होने के कारण परिवर्तन रुका हुआ है, संसार के परिवर्तन रुका हुआ है। तो समय ये हमको इशारा दे रहे हैं कि संस्कार संस्कार परिवर्तन की मिशनरी को तेज करो। तो हर एक इसमें अपनी जिम्मेवारी समझ करके अपने आप को जांच करे कि मेरे कौन सा पुराना संस्कार है जिसको अभी तक हमने परिवर्तन नहीं किया, तो वो परिवर्तन हो जाए तो समझो कि हमने समय की पुकार सुनी और उसको रेस्पॉन्ड दिया। और तीसरा विशेष समय की पुकार क्या है कि हम सब स्टूडेंट्स हैं ना, हम सब पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई का कभी तो एग्जामिनेशन होगा ना। ऐसा थोड़ी पढ़ाई पढ़ते ही रहेंगे एग्जामिनेशन ही ना हो। तो समय हमको सूचना दे रही है कई प्रकार से कि परीक्षा के लिए अपने आप को एवर रेडी रखो, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, परीक्षा भी तो आना ही है। परंतु वंडर क्या है कि हमारी परीक्षा का पत्र एग्जामिनेशन पेपर आउट हो गया है और समय भी निश्चित है, एक ही सेकेंड। बाकी सिर्फ इतना मालूम नहीं कि वो कौन सा स्थान पर होगा, वो स्थान मुकरर नहीं है। तो इसलिए समय की पुकार यही है कि आप एवर रेडी रहो, आपकी परीक्षा कभी भी हो सकता है, कहां भी हो सकता है। क्वेश्चन यही होगा, स्मृति स्वरूप एक सेकेंड में आत्मिक स्मृति स्वरूप, और कैसे भी परिस्थिति में हम हो परंतु ये प्रश्न का जवाब हमको एक सेकेंड में देना है। तो हमको बार बार ये इशारा मिल रहा है समय से, इसमें आप एवर रेडी रहो। एक बहुत बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आई थी, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि ये जो माला बनने वाली है ना, 8 की माला, 100 वाट की माला, 16,100 वाट, ये सब किसके आधार से बनता है। बहुत सिंपल बात बाबा ने सुनाया, आत्मा अभिमानी प्रैक्टिस के आधार से। जितना ज्यादा हम आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करेंगे, शरीर के भान से दूर रहेंगे, उतना हमारा नंबर आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमको वार्निंग समय से मिल रहा है, अभी एग्जामिनेशन टाइम आया कि आया, अभी सोने का वक्त नहीं है, बहाना देने का समय नहीं है, कारण देने का समय नहीं है, परंतु सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना है। वैसे भी देखो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन पेपर मिलता है तो हमको क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए ना। उसके बदले अगर हम प्रश्न के ऊपर ही प्रश्न पूछते रहेंगे तो समय गंवा देंगे। तो इसके लिए हमको एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहने का मतलब कि सब प्रकार की ज्ञान की बातें, सर्व शक्तियां, सर्व दैवी गुण अपने पास फुल स्टॉक में रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने को जो लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा वो ही पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो दूसरा ही प्रश्न आ जाता है तो नर्वस हो जाते। परंतु हमको एवर रेडी का मतलब कि सब ज्ञान की बातें, सब शक्तियां, सब दैवी गुण अपने में फुल हो, फिर हमको कोई भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो ये दूसरा प्रकार पुकार है समय की। और तीसरा कौन सा पुकार आपको सुनाई देता है, भक्तों की। अभी भगत कितना जोर से चिल्ला रहे हैं कि हे देवी देवता मुझे दर्शन दो, अपने अपने इष्ट देव देवियों के सामने जाकर के, तो उन्हों की इच्छा हम कब पूरी करेंगे। जब तक हम उनकी पुकारी नहीं सुनते तो हम उनके पुकार को जवाब कैसे दे सकते। तो तो इसके लिए हमको क्या करना है? दया स्वरूप, मर्सीफुल फॉर्म, ये स्वरूप धारण करते हुए सदी वरदानिहार देने का जो संस्कार है अपने अंदर धारण करना है। जब तक हमको ही चाहिए तो हम भक्तों की आशा कैसे पूर्ण कर सकते, भक्तों की पुकार हम कैसे सुन सकते ना? कल बाबा के बहुत अच्छा वरदान था ना, कि अगर आपको कोई भी सेवा करते हुए डिस्टर्बेंस होता है, आपकी स्टेज ऊपर नीचे होती है, मान नहीं मिला, शान नहीं मिला, ये साधन नहीं मिला, तो वो सेवा छोड़ दो पर अपनी स्थिति को संभाल के रखो। तो अगर हमको भक्तों की पुकार सुननी है तो हमको पहले इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला सब कुछ मिल गया है, ऐसा अनुभव आपको कुछ चाहिए अभी? नहीं चाहिए ना? देखो, अगर हमको किसी को कुछ नहीं चाहिए तो कोई फरियाद ही नहीं करने वाला होगा, कंप्लेंट्स ही नहीं रहेगा। आज हम एक दो का कंप्लेंट्स क्या करते हैं, मेरे को मान नहीं मिला, मेरे को प्यार नहीं मिला, परंतु बाबा ने सब कुछ दे दिया, हम भरपूर रहेंगे। तो बस जो हमारे सामने आए उनको जो चाहिए वो मिल जाए। तो इस बार आप ये स्वरूप लेकर के जाए, इच्छा मात्रम अविद्या, मेरे पास सब कुछ है, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो हमारे सामने आवे उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। ये तीसरी पुकार है। और चौथा पुकार कौन सा? पांच तत्व पुकार रही है, सारे तत्व हम तैयार हैं कि सिर्फ जो प्रकृति जीत आत्माएं हैं वो हमको अपनाए। वो तो माला लेके खड़े हैं, कई बार बाप दादा पूछते हैं ना कि तत्वों को ऑर्डर करें, काम चालू करें। अभी भी हम वर्तमान समय देखते हैं ना, चारों तरफ कहाँ भूकंप होता है, कहाँ बाढ़ आती है, कहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। एक बार हम लोगों ने दादी गुलजार से पूछा था कि हमको कैसे समझ में आए कि रियल डिस्ट्रक्शन है या रिहर्सल है, क्योंकि कोई भी बात रियल होने के पहले रिहर्सल होता है ना। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, रिहर्सल का मतलब कि एक तत्व अपना भयानक रूप दिखाई देगा, पानी, बिजली या आग, एक तत्व हलचल मचाएंगे, परंतु रियल का मतलब कि पांचों ही तत्व एक साथ में अपना जलवा दिखाएंगे, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको तत्वों की भी आह्वान सुनना है, तो उसको हम कैसे जवाब देंगे? तो उसके लिए हमको प्रकृति जीत बनना पड़ेगा। प्रकृति भी तीन प्रकार की होती है, एक है शरीर पांच तत्वों का बना हुआ, और दूसरा बाहर का वातावरण गर्मी सर्दी, और तीसरा है पांच तत्वों की बनी हुई चीजें। तो अगर इन कोई भी बात के अधीन नहीं होंगे, अधिकारी होकर के हम चलाएंगे, तभी हमको प्रकृति जीत कहा जाएगा। अभी देखो, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होता है तो हम बोलना चालू कर देते, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, या ठंडी हो जाते हैं तो ठंडी ठंडी, परंतु हम सुख दुख ठंडी गर्मी में समान अवस्था नहीं रह सकते। तो जब हम प्रकृति के ऊपर अधीन नहीं होंगे, प्रकृति को हम सेवा करके उसको हम उसकी सेवा करेंगे, तो फिर प्रकृति हमारी सेवा करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हम कभी भी प्रकृति से बनी हुई चीजें, कोई भी भौतिक चीजें हो या बाहर का वातावरण के वश होना या शरीर के कोई भी बीमारी के कारण मन में दुख करना, इससे हमको पास होना है। एक बारी पूछा गया था कि कर्मातीत अवस्था को हमने प्राप्त किया है, उसकी निशानी क्या होंगी। कर्म भोग तो अंत तक रहेगा। तो बहुत अच्छा बाबा का जवाब था कि भले शरीर में दर्द होगा परंतु मन में दुख नहीं होंगे। उसको कहा जाता है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन किया, प्रकृति जीत। समझ में आया ना? दुख माना दर्द तो होगा क्योंकि शरीर का है ना पांच तत्व तमो प्रदान, परंतु मन में दुख ना हो तो तभी हम कह सकते कि हम शरीर से परे। तो ये तो परीक्षा सबको आएगा, परंतु हम प्रकृति जीत बने हैं या नहीं, प्रकृति की पुकार सुनकर के उसको हमने क्या जवाब दिया उससे मालूम पड़ता है। तो एसेंस में हम यही कहना चाहते हैं कि हम कभी नहीं कहे समय दौड़ रहा है, टाइम इज फ्लाइंग। ब्राह्मणों को ये नहीं कहना चाहिए। टाइम तो अपनी स्पीड पर ही जा रहा है, जब हम थोड़ा डीले होते हैं ना तो समय के ऊपर हम दोष लगा देते हैं। इसलिए आप अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाते हुए समय को सफल करते जाएंगे तो आपका अच्छा कर्मों का खाता जमा होता जाएगा, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि समय तेजी से जा रहा है, क्योंकि जो करना है समय के अनुसार वो काम हमने समय के अनुसार किया तो कभी रिग्रेट नहीं होगा। जो समय को व्यर्थ गवाते हैं उसका फर्स्ट पनिशमेंट यही होगा, पश्चाताप। और पश्चाताप के लिए कोई भी दवाई नहीं है। इसलिए हम ब्राह्मण जीवन में बाबा ने जो दिव्य बुद्धि दिया है उसको यूज करके हर बात का ठीक निर्णय करते हुए, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो राइट बात के लिए समय दे करके उसको उपयोग करते हुए अपने जीवन को ऊंचा बनाए। तो बाबा का स्लोगन हम सदैव याद रखें। साकार बाबा को भी वही पसंद आते थे बच्चे, जो काम बाबा कहते ना अब करना है तो अभी करना है। तो आज से लेकर आप डिक्शनरी का शब्द चेंज कर दीजिए, कभी नहीं कहना कब करेंगे, नहीं अब। तो जो काम कल करना है वो आज करना है, आज करना है वो अब करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते थे डिले इज डेंजर। अगर आप कल करेंगे तो आज आपका खाल खा जाएगा तो क्या होगा? इसलिए कहते ना कल कल करते खाल भी खा जाता है। इसलिए अच्छे काम के लिए कभी भी कल नहीं करना। अगर आपको गुस्सा आने वाला होता है ना थोड़ा सा, उसको पोस्टपोन करना कल के लिए, तो कल तो आएगा भी नहीं और को गुस्सा आएगा भी नहीं, बुरा कर्म करेंगे भी नहीं। बाकी शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करना है, तभी हमारा बहुत समय का प्रारब्ध जमा होता जाएगा। तो हम भले देरी से भी बाबा के ज्ञान में आए तो लास्ट आकर के भी फास्ट जाकर के फर्स्ट में जा सकते हैं। तो इसके लिए ये चारों प्रकार के पुकार हम सुन करके एक ही एक धारणा हम जीवन में अपनाएं तो चारों का पुकार का जवाब हम दे सकते। तो एसेंस में एक ही शब्द हम कहेंगे, दाता। दाता बनो, बस देना ही देना ही देना है। अगर ये संस्कार हमने धारण कर लिया तो बाबा की पुकार का भी जवाब, समय की पुकार का भी जवाब, भक्तों के पुकार का भी जवाब और तत्वों का भी जवाब मिल जाएगा। मुझे चाहिए वो नहीं, बाबा से मुझे बहुत मिला है, मुझे देना है, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, सम्मन से, संपर्क से। और ये लॉ है, जितना आप देंगे उतना आप भरपूर रहेंगे, जितना चाहिए चाहिए उतना खाली रहेंगे। तो इसलिए इस बारी मधुबन से ये मंत्र लेकर के जाना। कौन सा मंत्र? मैं दाता, वरदाता और विदाता, दानी, महादानी और वरदानी, बस देना है देना है। आपका हाथ ऐसे ऐसे नहीं, देवता लेवता नहीं। तो फिर हम सब बहुत ही जल्दी बाबा की जो आश है संपन्न बने और संपूर्ण बने और बाप समान बन करके घर जाए, हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ इस बारी ये दो शब्द, अब घर जाना है और मुझे सबको देना है, देना है देना है, बस ये दो मंत्र साथ में ले जाएंगे तो आपका मधुबन में आना सफल हो जाएगा। थैंक यू।
दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो।